ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार पर चर्चा। इसमें भाग ले रही हैं पत्रकार गार्गी परसाई। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं मनोज पाठक।
नमस्कार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार प्रदान किए। इस वर्ष जमीनी स्तर पर शासन और सामुदायिक विकास की व्यापक उपलब्धियों को दर्शाते हुए विभिन्न श्रेणियों में कुल 45 पुरस्कार दिए गए हैं। समारोह के दौरान पंचायती राज मंत्री ने पुरस्कार विजेता पंचायतों की नवाचारी और प्रभावी कार्य प्रणालियों पर एक पुस्तिका का अनावरण भी किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस अवसर पर कहा,
आप सबके समर्पण और प्रयासों के बल पर आपकी पंचायतों को ये सम्मान प्राप्त हुआ है। मुझे विश्वास है कि ये सम्मान आपको और भी बेहतर कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने ग्राम स्वराज का सपना देखा था। उनके सपनों का आदर्श गांव एक स्वतंत्र इकाई या एक पूर्ण गणराज्य था। उनके आदर्श गांव में राजस्व सृजन, स्वच्छता, ग्रामीण उद्योग, महिलाओं की उच्च स्थिति जैसे घटक शामिल थे।
मंत्रालय की ओर से यह जानकारी देते हुए कहा गया कि इन पुरस्कारों का उद्देश्य अन्य पंचायतों को श्रेष्ठ कार्य प्रणाली अपनाने के लिए प्रेरित करना और ग्रामीण भारत के समग्र विकास में योगदान देना है। आज हम इसी विषय पर मुख्य रूप से चर्चा करेंगे और समझना चाहेंगे कि भारतवर्ष में यूं तो पंचायत की अवधारणा अत्यंत प्राचीन है और पंच परमेश्वर की कथा हम बचपन से कहते सुनते आ रहे हैं, आम जीवन में भी इसका उदाहरण यदा कदा देखने को मिलता है, लेकिन पंचायती राज व्यवस्था किस रूप में देश के विकास में ग्रामीण स्तर पर पंचायत के स्तर पर काम कर रही है, इसको समझने के लिए आज हमने आमंत्रित किया है वरिष्ठ पत्रकार गार्गी परसाई जी को। मैम नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
नमस्कार।
सबसे पहले मैम तो हम यही समझना चाहेंगे कि पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत आज अच्छे खासे पुरस्कार दिए गए हैं, विभिन्न पंचायतों को चुना गया है और राष्ट्रपति ने उन्हें अपने कर कमलों से पुरस्कार दिया। कुल मिलाकर सबसे पहले हम यही समझना चाहेंगे कि पंचायती राज व्यवस्था किस रूप में हमारी गाँव के पंचायत को समृद्ध कर रही है, वहाँ विकास कार्यों को आगे बढ़ा रही है।
शायद आप जानते होंगे कि ये जो पंचायती राज की व्यवस्था है ये एक हमारे देश में 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1992 में लाया गया था उसके अंतर्गत ये व्यवस्था जो अभी जो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं ये व्यवस्था स्थापित की गई। इसके अंतर्गत पंचायतों को जो बेसिक इसका उद्देश्य था वो ये था कि पंचायतों को जो गवर्नेंस है उसको डिसेंट्रलाइज करा जाए और पंचायतों को थोड़ी सी फाइनेंशियल जो है वो भी डिसेंट्रलाइज किया जाए कि पंचायतों के हाथ में डेमोक्रेसी रहे, अपने अपने क्षेत्र में जो समस्याएं हैं उनको सुलझाने की ताकत रहे और उनको उसके लिए वो धनराशि मिले और वो अपने आप तय करें कि वो धनराशि वो किस कार्य में लगाएंगे जिससे कि उनका गांव समृद्ध हो सके। आज जो पुरस्कार दिए गए हैं वो उन पंचायतों को दिए गए हैं जो इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए काम कर रहे हैं और इसमें जैसा कि आपने कहा 45 पंचायतों को चुना गया है और ये देखने में बहुत अच्छा लग रहा है कि कई पंचायतें नॉर्थ ईस्ट की हैं।
बिल्कुल, नॉर्थ ईस्ट में यदि हम देखें तो त्रिपुरा से पुरस्कार मिला है। त्रिपुरा को 4 पुरस्कार दीन दयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार के लिए मिला है। श्रोताओं, यहाँ पर हम समझना चाहेंगे कि कुल मिलाकर सतत विकास की प्रक्रिया किस रूप में है और जिन्हें चुना गया है, सबसे अधिक आंध्र प्रदेश को 4 पुरस्कार मिले हैं जबकि बिहार को 3 पुरस्कार मिले हैं। इसी तरह त्रिपुरा को 4 दीन दयाल उपाध्याय सतत विकास पुरस्कार है। यहाँ पर सतत विकास पुरस्कार के लिए जो इस वर्ष चुना गया है यह क्या संदेश दे रहा, ये लगातार विकास के पैमाने पर आगे बढ़ रहे हैं या कोई और भी कारण है जिसमें ये पंचायतें इनके साथ साथ और यानी कुल मिलाकर 27 पंचायतें चुनी गई हैं जहां कंटीन्यूअस ग्रोथ चल रहा, गांव का उत्थान हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप?
देखिए, सतत विकास उसको माना जाएगा जिसमें आप गांव की समस्याओं को प्रमुख रखेंगे। गांव की समस्या अभी तक जो ट्रेडिशनल समस्याएं चली आ रही हैं वो है इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी और बाकी हेल्थ में, एजुकेशन में, सैनिटेशन में, घर में, घर बनाने में, इन सब चीजों की कमी जो थी उसकी पूर्ति के लिए पंचायत अपनी ओर से तय करें कि उनको किस चीज की कितनी जरूरत है और उनके जो फंड्स मिलते हैं वो फंड्स उस दिशा में लगाएं। पिछले वर्षों में देखा गया है कि एनवायरनमेंट की तरफ एक बहुत ज्यादा ध्यान सरकार दे रही है और उसके अंदर जो कार्बन को सीक्वेस्टरिंग कहते हैं, जिसको कि हमारी जो जमीन की उर्वरकता है वो खत्म हो रही है, उसको बढ़ाने के लिए आपको कार्बन सेव करना पड़ेगा सॉइल के अंदर। तो कई पंचायतों ने, मैं देख रही हूँ कि उस ओर भी काम किया है, जैसे और सोलर की तरह, सौर ऊर्जा की तरह भी तरफ भी ध्यान दिलाया जा रहा है गाँव का, किसानों का, एग्रीकल्चर में, ऑर्गेनिक फार्मिंग में भी ध्यान दिलाया जा रहा है कि इन सब चीजों की ओर ध्यान दें ताकि आपका गांव खुशहाल हो सके और सभी जातियों का, सभी का समग्र विकास हो सके।
इस अवसर पर पुरस्कार जीतने वाले पंचायत प्रतिनिधियों के अनुसार कहा,
संदीप थानादार, शिमला डिस्ट्रिक्ट। दो पुरस्कार मिले, एक सोशलिस्ट के और पंचायत का अवार्ड मिला, दूसरा जो है नाना जी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत का अवार्ड मिला, जिसमें सारी थीमों में जिसने बेस्ट किया होता है उसके लिए ये पुरस्कार मिला।
रोमा श्रीवास्तव, हरदी भाटा ग्राम पंचायत जो नगरी ब्लॉक का है, उसमें पेंशन योजना में शत प्रतिशत सैचुरेशन है और सामाजिक जितने भी स्कीम्स जो पंचायत से चलते हैं सब में शत प्रतिशत सैचुरेशन है और बेनिफिट्स भी टाइमली प्रोवाइड किए जाते हैं।
श्रोताओं, कार्बन न्यूट्रल विशेष पंचायत पुरस्कार किस तरह से कार्बन उत्सर्जन को रोकने में पंचायत भूमिका निभा सकते हैं, उसके बारे में मैम ने जानकारी दी। इस वर्ष 3 पुरस्कार दिए गए हैं, यानी यहाँ पर कार्बन संरक्षण के लिए बेहतर काम इन पंचायतों ने किया है। इसी तरह इस बार नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार भी दिया गया है, जिसमें अनेक राज्यों में सतत विकास की अवधारणा को बढ़ाया जा रहा है। उसके अलावा ग्राम ऊर्जा स्वराज विशेष पंचायत पुरस्कार भी कुछ पंचायतों को मिला है, कुल संख्या इनकी 3 है। यहाँ पर हम, मैम, आपके माध्यम से समझना चाहेंगे कि जैसी आपने चर्चा की कि सौर ऊर्जा का इस्तेमाल बढ़ाया जा सकता है, किस रूप में ऊर्जा क्षमता विकसित की जा सकती है गाँव के स्तर पर, किन किन माध्यमों से और क्या क्या संभावनाएं निकल के आती हैं कि ग्राम पंचायत उनको इम्प्लीमेंट कर सके अपने यहाँ।
देखिए, शुरुआत में तो सबसे ज्यादा सोलर पंप की बात हुई है, क्योंकि आपको पंप्स चलाने के लिए ऊर्जा चाहिए खेतों में पानी पहुंचाने के लिए। तो अभी तो पहला स्टेप यही लिया गया है कि जो सोलर एनर्जी है उसको इस काम में लाया जाए। धीरे धीरे जो इसके बाकी जो इम्प्लीमेंटेशंस हैं वो बढ़ाए जाएंगे और बाकी ये जो सोलर एनर्जी है वो कई तरह से देखा गया है कि गोबर गैस बनाने के लिए भी गाँव में काम में आता है। अभी मैं कहूंगी कि एक्सपेरिमेंटल स्टेज पे है, इसको बढ़ने में थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा सा लोगों को भी इसके बारे में ज्ञान भी देना होगा और थोड़ी ट्रेनिंग भी करनी होगी।
श्रोताओं, यहाँ पर हम आपको जानकारी देना चाहेंगे कि नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार कुल 9 पुरस्कार दिए गए हैं और सबसे सर्वोत्तम जो ग्राम पंचायत पहले नंबर पर है वह मनीचवारी ब्लॉक है, डिस्ट्रिक्ट सतारा में, महाराष्ट्र के, वहां मिला है। दूसरा स्थान बेबेजा देमो बंगथल ब्लॉक है, जो खगरगंज में है, नागौन में है, इसको मिला है पुरस्कार। इसी तरह विभिन्न कैटेगरी में पुरस्कार दिए गए। यहाँ पर हम ये समझना चाहेंगे कि आपने कहा कि पंचायती राज व्यवस्था को शुरू हुए लगभग 3 दशकों की हमारी यात्रा, लगभग यदि हम मान लें तो 3 दशकों की यात्रा है, उसमें ग्राम पंचायतें किस रूप में भूमिका निभा रही हैं गाँव के बुनियादी ढांचे के विकास में, किस रूप में व्यवहारिक स्तर पर काम हो रहा है यहाँ?
देखिए, इन प्रिंसिपल जो व्यवस्था लाई गई है उसका यही उद्देश्य है कि जो ग्राम पंचायत है वो सशक्त हो। और आपको याद होगा कि इसमें 35% जो है महिलाओं को रिजर्वेशन दिया गया है ताकि महिलाओं की भागीदारी रहे, महिलाएं अपनी समस्याओं के बारे में बता सकें और महिलाएं निर्णय ले सकें, महिलाओं को सशक्त किया जाए। ये उसका एक बहुत ही सेंट्रल उद्देश्य था और वो काफी हद तक अभी सफल होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये जो पंचायत राज व्यवस्था है इसमें जो गांव की जो लोकल अफेयर्स हैं, खासकर जो उनकी लोकल समस्याएं हैं, क्योंकि देखिए गांव में जो समस्याएं हैं वो गांव के ही लोग बता सकते हैं, वो ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हमारे देश में इतने विभिन्न प्रकार की जमीन है, विभिन्न प्रकार की खेती होती है, विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज होती हैं, कहीं पे बाढ़ है तो कहीं सुखाड़ है। तो ये जो चीजें हैं ये आप ऊपर से जो है तय नहीं कर सकते हैं। ये जो ग्रामवासी हैं वो खुद ही बता सकते हैं कि हमें यहाँ पर बाढ़ के लिए व्यवस्था करनी है। आजकल एक बहुत बड़ी समस्या आ रही है कि जंगली जानवर जो है वो खेत वगैरह को नुकसान पहुंचाते हैं। तो जो आपने सौर ऊर्जा की बात की थी, सोलर एनर्जी की, तो ये भी आजकल नया एक चल रहा है कि फेंसिंग करें और उसमें सोलर एनर्जी को इस्तेमाल करें कि एनिमल्स उसके खेत के अंदर ना जा सकें। तो इसलिए जो इसका तीन ही बेसिकली उद्देश्य थे, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, के पावर का डिसेंट्रलाइजेशन हो, जो पैसे हैं, जो फंड्स हैं, उसका भी डिसेंट्रलाइजेशन हो, गांव वाले ग्राम सभा खुद तय करें कि हमारे को अपने पैसे किस काम में लगाने हैं, हमारी क्या जरूरतें हैं, हम उस तरह लगाएं। ये नहीं कि जैसे पहले होता था टॉप डाउन गवर्नेंस होता था कि ऊपर से पैसा आता था, स्टेट गवर्नमेंट से आए या सेंट्रल गवर्नमेंट से आए, और वो पैसा एक किसी पर्टिकुलर स्कीम के लिए होता था, जो कि स्कीम सब गांवों को उतनी नहीं चाहिए होती थी। तो इसलिए अब गांव स्पेसिफिक होने के लिए पंचायत राज इंस्टीट्यूशन एक्ट लाया गया, और इसमें अगेन जैसे मैंने कहा कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है, इसमें डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ फाइनेंस है, और इसमें एम्पावरमेंट है। एम्पावरमेंट सिर्फ विमेन का नहीं है, एम्पावरमेंट सब जातियों का है, क्योंकि सब जातियों को ग्राम सभा में भागीदारी मिलती है।
श्रोताओं, हमने जाना कि पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान किए गए और इसका लाभ भी दिख रहा है। विभिन्न जो पंचायतें होती हैं वहां पर मुखिया के पद पर या सरपंच के पद पर महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, और कुल मिलाकर विभिन्न जो कैटेगरी बनाई गई हैं उसके माध्यम से सर्वांगीण विकास के लिए गांव के आम लोगों को अधिकार दिया गया है। जो निधि पहुंचती है उसमें ग्राम सभा के, ग्राम पंचायत के जो प्रतिनिधि होते हैं वही फैसला करते हैं। कुल मिलाकर हम यह समझना चाहें कि वहां के आम लोगों की अपनी भागीदारी से एक व्यापक बदलाव देखने को मिल रहा है। इस वर्ष महिला हितैषी पंचायत के रूप में 3 पंचायतों को चुना गया है, दक्षिणी मनवांकुल पंचायत, चिल्लापल्ली पंचायत और वरगनूर पंचायत, जो कि तमिलनाडु, तेलंगाना और त्रिपुरा राज्यों से हैं। इसी तरह विभिन्न सर्वश्रेष्ठ ब्लॉक पंचायत के रूप में, सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत के रूप में और जिला पंचायत के रूप में भी विभिन्न कहले राज्यों से विभिन्न पंचायतों को इस बार पुरस्कार मिला है। यहाँ पर आपके माध्यम से हम समझना चाहेंगे कि पंचायती राज व्यवस्था को और सशक्त करना हो तो क्या कदम उठाना चाहिए, क्या राय देना चाहिए?
मुझे ये लगता है कि जो इलेक्शन का प्रोसेस है
जी,
उसमें थोड़ी सी ओपननेस होनी चाहिए, और थोड़ा सा जो लोग आते हैं, गांव के लोग आते हैं, अभी तो गांव में काफी बदलाव आ रहा है, थोड़े लोग पढ़े लिखे भी आ रहे हैं सामने, महिलाएं भी सामने आ रही हैं, उनको ट्रेनिंग देनी चाहिए। देखिए, हर किसी को हर चीज चलानी तो आती नहीं है, वो आपको सीखनी भी पड़ती है कि एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस कैसे होते हैं, तो उस बारे में थोड़ी सी ट्रेनिंग दी जाए, तो उससे जो पंचायत के जो अधिकारी हैं, वो जो सरकार के जो अधिकारी हैं, उनसे एक इंटरैक्शन कर सकेंगे, उन्हीं के लेवल पे एक इक्वल फुटिंग पे इंटरैक्शन कर सकेंगे, अपनी बात ठीक से रख सकेंगे।
ये सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है और कैसे इनमें भागीदारी गांव के लोगों की हो सकती है, और पंचायतों में ये क्या भूमिका निभा सकते हैं, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हमारे श्रोताओं को दें।
सेल्फ हेल्प ग्रुप महिलाओं के ग्रुप होते हैं जिनको लोन दिया जाता है और वो फिर अपना एंटरप्राइज शुरू कर सकती हैं, कुछ भी काम कर सकती हैं, अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कर सकती हैं। कई जगह तो देखा गया है कि महिलाएं पुरुषों से ज्यादा कमा रही हैं घरों में सेल्फ हेल्प ग्रुप के नाते, और ये भी देखा गया है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं जो लोन लेती हैं सरकार से, और वो लोन चुकाने में वो सबसे ज्यादा आगे रहती हैं, और उनका लोन का जो पेमेंट होता है जब वो अपना एंटरप्राइज बना लेती हैं और उसको मार्केट कर पाती हैं, तो उनका करीब 99% उनका जो पेमेंट वापस वो कर पाती हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होती हैं, अवेयर होती हैं, सशक्त होती हैं। एक सशक्त महिला जो है परिवार को, अपने बच्चों के स्वास्थ्य को, अपने खुद के स्वास्थ्य को और परिवार के जो न्यूट्रिशन नीड्स हैं उसको ज्यादा अच्छे पहचानती है, और इससे पूरे गांव का, पूरे देश का विकास हो सकता है।
यहाँ पर श्रोताओं की ओर से हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, बहुत उपयोगी और सार्थक जानकारियां आपने दी हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद।
अभी आप सुन रहे थे राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार पर चर्चा। इसमें भाग ले रही थीं पत्रकार गार्गी परसाई। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे मनोज पाठक। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।